दिन भर 20 सितंबर बृहस्पतिवार सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। भारत ने पाकिस्तान का अनुरोध स्वीकार किया, न्यूयॉर्क में मिलेंगे दोनों देशों के विदेश मंत्री।
बातचीत की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि बातचीत के प्रक्रिया में अगर आप फंसे तो वो सारी और दुनिया के बारे में बात करेंगे और आतंकवाद को कहीं और छुपा देंगे, उनके हर एक चाल हम जानते हैं।
छत्तीसगढ़ में गठजोड़ का ऐलान, जोगी मायावती ने मिलाया हाथ। राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाके में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को दी चुनौती।
देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने 9000 करोड़ चोरी करने वाले चोर को भगा दिया और प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं कहते, चुप बैठे हुए हैं। गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है।
होगी खबर विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इसी महीने अपने पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगी। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये मुलाकात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक के इतर होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी कि दोनों देशों के बीच बातचीत होनी चाहिए, जिसके बाद भारत ने भी अपनी ओर से ये पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। गिरफ्तार कार्यकर्ताओं पर भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में माओवादियों से संपर्क होने का आरोप था। ये याचिका इतिहासकार रोमिला थापर और 4 अन्य लोगों ने दायर की थी। इसमें कार्यकर्ता की तत्काल रिहाई और मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई थी। पीठ ने महाराष्ट्र पुलिस को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच से संबंधित केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया, जबकि उनसे संबंधित पक्षों को 24 सितंबर तक अपने लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश दिया है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने दोहराया है कि प्रधानमंत्री टेरेसा मे की ब्रेग्जिट डील पर सहमति से पहले ब्रिटेन आयरलैंड की सीमा पर सुरक्षा और सीमा शुल्क नियंत्रण की गारंटी दे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि यूरोपीय संघ एक बाजार के सिद्धांत को लेकर बेहद स्पष्ट है। उन्होंने ये बात ऑस्ट्रिया के शहर सेल्सबर्ग में हुई बैठक के दौरान कही। इस बैठक में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थी। यूरोपीय संघ के नेताओं ने नवंबर में विशेष ब्रेग्जिट सम्मेलन का आयोजन करने पर सहमति भी जताई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा,
Ma volonté c'est que premièrement nous restions groupés.
मैं चाहता हूं कि हम सब एकजुट रहें। सभी 27 सदस्यों का साथ रहना बेहद जरूरी है, हल निकालना ही होगा, लेकिन इससे हमारी एकता और एक बाजार के सिद्धांत को नुकसान नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, हमें नवंबर तक समझौते पर पहुंचना होगा। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक पर सरकारी खजाने से लाखों डॉलर की हेराफेरी करने का आरोप लगा है। उन पर सत्ता के दुरुपयोग और अवैध लेन देन के आरोप भी हैं। नजीब रजाक ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उनके वकील मोहम्मद शफी अब्दुल्ला ने कहा,
I am very confident we'll win this case. I don't think they can prove anything.
मुझे पूरा भरोसा है कि हम ही केस जीतेंगे। मुझे नहीं लगता कि आरोप साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत है। वो सिर्फ ये साबित कर सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री के निजी अकाउंट में पैसा आया और गया, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाएंगे कि पैसा अवैध था। उनके केस में कोई दम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि रूस और तुर्की के समझौते के बावजूद सीरिया के इदलिब प्रांत में बड़ा युद्ध हो सकता है। रूस और तुर्की के अधिकारियों से मुलाकात के बाद संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीरियाई सरकार अपने सहयोगी रूस के साथ मिलकर इदलिब प्रांत में विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले कर सकती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने यह भी कहा कि रूस और तुर्की ने उम्मीद जताई है कि इदलिब की लड़ाई में खून खराबा कम होगा। बोको हराम के संदिग्ध चरमपंथियों ने नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी राज्य बोर्नो के 2 गांवों पर हमला किया। इस हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि नाइजीरिया की सेना ने अब तक इन मौतों की पुष्टि नहीं की है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने रूस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। ये प्रतिबंध डोपिंग स्कैंडल सामने आने के बाद 2015 में लगाया गया था। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा। दिन भर संदीप सोनी के साथ। भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने बातचीत में गतिरोध खत्म करने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात का सुझाव दिया था। भारत ने पाकिस्तान के इस अनुरोध को आज स्वीकार कर लिया।
इस समय मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट के बाद हमने ये तय किया है कि हमारे विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच न्यूयॉर्क में UNGA के साइडलाइंस में ये मीटिंग होगी। जो समय है, जो तारीख है, वो जो हम दोनों के परमानेंट मिशन है, उन दोनों के बीच में कंसल्टेशन से इसको तय की जाएगी।
ये थे भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार। मैंने अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजनयिक जी पार्थ सारथी से बात की और जानना चाहा कि इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा, होगा भी या नहीं।
मेरे ख्याल में कोई पूर्व निर्धारित एजेंडा नहीं होगा। ये एक बातचीत की प्रक्रिया नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये इच्छा व्यक्त की कि विदेश मंत्री मिले और विदेश मंत्री मिलेंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये है कि आतंकवाद को खत्म किया जाए। आज ही अमेरिका के विदेश मंत्रालय के सूचना है कि कश्मीर में और भारत के अन्य हिस्सों में जो आतंकवाद होता है उसमें पाकिस्तान का हाथ है। अब पाकिस्तान से इन चीजों में बात करने से मैंने तो कुछ फायदा नहीं पाया है, क्योंकि वो इनकार करेंगे, नकार देंगे। लेकिन मिलकर हम ये संदेश दे रहे हैं कि हमने उनको स्पष्ट कर दिया है कि कोई कश्मीर वगैरह का बारे में चर्चा करना सवाल ही नहीं उठता जब तक आतंकवाद बंद ना हो।
पार्थ सारथी साहब, आपको लगता है कि फिर इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत तो शुरू हो ही नहीं पाएगी कभी?
बातचीत की प्रक्रिया नहीं होगी जरूर, क्योंकि बातचीत के प्रक्रिया में अगर आप फंसे तो वो सारी और दुनिया के बारे में बात करेंगे और आतंकवाद को कहीं और छुपा देंगे। उनके हर एक चाल हम जानते हैं।
क्या इसका ये भी एक मायना निकाला जा सकता है कि पाकिस्तान में सत्ता भले ही बदल गई है, सरकार भले ही बदल गई है, प्रधानमंत्री भले ही बदल गए हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में वो केमिस्ट्री, वो बातचीत की कहीं कोई गुंजाइश अभी भी बन नहीं पाई है?
देखिए, 2004 और 2006 के बीच अच्छी बातचीत हुई, वो एक हर एक समस्या पर हुई, कश्मीर पर हुआ, लेकिन वो बातचीत की प्रक्रिया उतने आगे निकल पाया इसलिए कि पाकिस्तान ने हमको 2004 जनवरी को आश्वासन दिया कि उनके धरती से भारत के खिलाफ आतंकवाद नहीं होगा, और जो उन्होंने उस समय कहा 2 साल के लिए उसका पालन किया उन्होंने, तो बातचीत हुई। उसी तरह के अगर वो आश्वासन फिर दें और रुक जाए तो जरूर हर चीज पर बात कर सकते हैं।
यानी न्यूयॉर्क वाली बैठक से, मुलाकात से बहुत ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं।
अब मेरे तो कभी उम्मीद वगैरह पर मैं भरोसा नहीं करता, असलियत पर करता हूँ।
और इस समय दोनों देशों की असलियत क्या है?
मैं समझता हूँ कि देखना पड़ेगा, अगर इमरान खान आतंकवाद पर कुछ नियंत्रण कर सके तो फिर देखेंगे, नहीं तो संपर्क तो रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश सचिव, कभी कभी ये मंत्री मिले, शायद जो इंडिया पाकिस्तान कमीशन बना उसका भी बैठक हो सकता है अगर कुछ प्रगति हो तो। लेकिन एक गंभीर किस्म का बातचीत की प्रक्रिया का सवाल ही नहीं उठता।
ये थे पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजनयिक जी पार्थ सारथी। भारत में इस साल के आखिर तक कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इनमें राजस्थान भी शामिल है, जहां इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाके मेवाड़ में आज एक रैली को संबोधित किया और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। इससे 2 दिन पहले ही मेवाड़ में ही BJP अध्यक्ष अमित शाह आदिवासियों को संबोधित करके लौटे हैं। नारायण बारेठ की रिपोर्ट सुनें।
वे आक्रामक मुद्रा में थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दक्षिणी राजस्थान के सागवाड़ा में एक भीड़ भरी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, केंद्र सरकार अमीरों के एक समूह का भला करने में लगी हुई है। राहुल गांधी ने उद्योगपति विजय माल्या के देश छोड़ने का मुद्दा फिर उठाया और प्रधानमंत्री से जवाब मांगा।
चौकीदार
प्रेक्षक कहते हैं कि राज्य की राजनीति में आदिवासी बहुल मेवाड़ सत्ता का प्रवेश द्वार है, इसीलिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी गौरव यात्रा का आगाज भी मेवाड़ के चारभुजा से किया था। अब कांग्रेस ने भी अपनी जीत पुख्ता करने के लिए मेवाड़ में रैली की है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण में गाँव, गरीब और किसान के मुद्दे उठाए, कहने लगे अच्छे दिन का वादा छलावा साबित हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने बेरोजगार नौजवानों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में मेवाड़ में बीजेपी ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था। राजस्थान में ये चुनावी सभा रैलियों की शुरुआत है। इन सभाओं में हर नेता भविष्य के सुंदर सपनों की तस्वीर बनाता नजर आता है। उनके पास मोहक बातें हैं और वादे भी, मगर लोग पूछते हैं क्या ये वादे यथार्थ की जमीन पर भी उतरेंगे। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
और उधर छत्तीसगढ़ में भी इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां आज एक बड़ी घटना हुई है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती और जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अजीत जोगी ने हाथ मिला लिए हैं। दोनों दल साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सुनिए बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने इस बारे में क्या कहा।
हमने गठबंधन करके चुनाव लड़ने का ये फैसला ले लिया है, इसके आज हम ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। फाइनली हमने ये डिसीजन ले लिया है कि ये दोनों पार्टियां मिलकर वहां पर चुनाव लड़ेंगी। और छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं, तो गठबंधन में 90 में से 35 सीटें बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी और 55 सीटें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे लड़ेगी।
बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के बाद अब आपको सुनवाते हैं जनता कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का इस बारे में क्या कहना है।
भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों से राज्य कर रही है और सत्ता का दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग, अपने पद का दुरुपयोग, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके वो फिर सत्तारूढ़ होना चाहती है। अब हमारा गठबंधन हो गया है, आदरणीय मायावती जी और हम लोग मिलकर उनको अवश्य रोक लेंगे।
ये थे अजीत जोगी, जो पहले कांग्रेस के ही नेता थे, जिन्होंने बाद में अपनी अलग पार्टी बना ली। आइए सीधे चलते हैं रायपुर हमारे सहयोगी आलोक पुतुल के पास। आलोक, ये बताएं कि मायावती और अजीत जोगी का गठबंधन कांग्रेस के लिए क्या कोई झटका है, और यदि है तो कितना बड़ा झटका माने इसे?
कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका इसलिए माना जा सकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस साल के शुरुआत से ही बसपा के साथ गठबंधन करने की तैयारी में जुटी हुई थी, और अगर पिछले चुनावों के परिणामों को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के बीच वोटों का अंतर लगभग 1% से भी कम था। इसके उलट बसपा को पिछले चुनाव में 4% वोट मिले थे। बसपा 14 सीटों पे मजबूत रही है, तो कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि अगर इस बार बसपा के साथ गठबंधन होता है तो शायद राज्य में उसकी सरकार बन जाएगी।
बताइए आलोक, ये बताइए कि ये जो मायावती और अजीत जोगी का गठबंधन हो गया है, ये गठबंधन अप्रत्याशित है या इसकी संभावना पहले से ही थी?
पिछले सप्ताह पहली बार अजीत जोगी की पार्टी और मायावती की बसपा के प्रतिनिधिमंडल के बीच छत्तीसगढ़ के में लगातार ये बातचीत जारी हुई थी, और हालांकि दोनों पार्टियों ने लगातार इसका खंडन किया था कि वो ऐसे किसी भी गठबंधन में नहीं जाने वाले हैं। हालत ये थी कि सोमवार तक दोनों पार्टियां इस बात का खंडन करती रहीं कि वो ऐसे किसी गठबंधन की तैयारी कर रही हैं। जाहिर है दोनों पार्टियों का आज के गठबंधन की जो घोषणा हुई है वो सबको चौंका रही है।
आलोक, ये बताइए कि मायावती और अजीत जोगी ने जो हाथ मिला लिए हैं, तो जो मुख्य विपक्षी दल है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी, इनकी तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है तो क्या कह रहे हैं ये दल?
अभी तक दोनों पार्टियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और दोनों पार्टियां ये सोचने समझने का शायद अवसर ले रही हैं कि इस गठबंधन का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि भाजपा भी इस बात को लेकर आशंकित है कि आने वाले दिनों में अगर जनता कांग्रेस और बसपा का ये गठबंधन अगर बड़ी सीटें लेकर चला जाता है तो उनके लिए भी मुश्किल पैदा होगी, जाहिर है कांग्रेस के लिए भी सोच का विषय यही है।
बहुत शुक्रिया। ये थे रायपुर से आलोक पुतुल। छत्तीसगढ़ में गठजोड़ का ऐलान हुआ है, जोगी और मायावती ने हाथ मिला लिए हैं। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पिछले 1.5 महीने में विभिन्न बीमारियों से 79 बच्चों की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों का ये कहना है कि ये बच्चे बरसात और बाढ़ के बाद होने वाले संक्रमण की वजह से मारे गए हैं, लेकिन लोगों का ये दावा है कि अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है और लापरवाही के कारण बच्चों को सही इलाज नहीं मिल पाता, इसीलिए बच्चों की मौत होती है। सुनिए बहराइच से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
बहराइच के जिला अस्पताल का ये बाल रोग विभाग है। 40 बिस्तर के इस वार्ड में करीब 100 बच्चों का इलाज हो रहा है। कुछ के माँ बाप अपने बच्चों को भर्ती कराने के लिए बाहर खड़े हैं। ज्यादातर बच्चे उन्हीं बीमारियों से ग्रस्त हैं जिनके चलते अब तक कई बच्चों की मौत हो चुकी है।
पंजड़ी चला तो है, अभी डॉक्टर जगह चुनाव करे नहीं।
अच्छा।
अभी आए हैं, 1 घंटा हुआ भर्ती हुए।
दवाई दिए हैं?
अभी दवा ना मिला है, मतलब ये सब मिल गया है।
सलमा का बच्चा अभी 3 महीने का भी नहीं है और पिछले 2 दिन से उसे सांस की समस्या है। वहीं 4 दिन से अपने बच्चे का इसी वार्ड में इलाज करा रहे श्रावस्ती से आए परिवार का कहना था,
आज 4-5 रोज से बुखार ना उतरत है। हाँ।
क्या कह रहे हैं डॉक्टर?
डॉक्टर कहा था आराम हो जी, दवाई करी था आराम हो जी।
कहाँ से आई है?
मल्हेपुर भेला गाँव श्रावस्ती।
वहाँ से नया राम भवा, तब सरकारी अस्पताल मल्हेपुर है, हुआ के नए ठिकान बंगाली के दुकान रहा, हुआ के तो नया राम भा तो भिया भाग।
डॉक्टर आते हैं रोज देखने?
आवत तो साहब आवत है रोज।
बहराई से करीब 15 किलोमीटर दूर कल्पीपारा गांव की केसरी देवी के 2 बच्चों की 2 दिन पहले मौत हो गई। घर में मातम पसरा हुआ था।
दोनों एक दुख एक दर्द, इधर पेटवाई पेटवाई से हमारा बच्चा नहीं जाने पावा भैया दुख मामा कुछ काओ कहे।
बहराइच के जिला अस्पताल में बलरामपुर श्रावस्ती गोंडा जिले से तो लोग अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए आते ही हैं। नेपाल के भी कुछ इलाकों के लिए यही अस्पताल सहारा होता है, लेकिन खुद अस्पताल की हालत बेहद नाजुक है। यहाँ इतने बच्चों के इलाज की सुविधा ही नहीं है। महज 6 डॉक्टर सैकड़ों की संख्या में आए बीमार बच्चों के संकट मोचन बने हुए हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का चार्ज संभाल रहे डॉक्टर डीके सिंह कहते हैं,
1 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक का जो आंकड़ा है, इसमें 2158 बच्चे जो यहाँ पे एडमिट थे, उसमें 71 बच्चों की विभिन्न बीमारियों से डेथ हुई है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो लगभग 80 बच्चे हैं के आसपास जो एडमिट हैं, हमारे यहाँ जो 40 बेड थे, 40 बेड में अभी 11 बच्चे बेड जो बढ़ाए गए हैं, जो बड़े बेड हैं वो डाले गए हैं, बेड पे 2-2, 3-3 बच्चे लेटे हुए हैं, रात में भी डॉक्टर उपलब्ध हैं।
डॉक्टरों का ये भी कहना है कि यहाँ ज़्यादातर लोग तब बच्चों को लेकर आते हैं जब उनकी हालत बिगड़ जाती है। वहीं चिल्ड्रन वार्ड में कुछ बच्चों की तीमारदार अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का भी आरोप लगा रहे थे।
और रफ्तार ग्राउंड पे कोई डॉक्टर बड़ा नहीं आ रहा है, कल से बच्चे 2-3 मर के यहाँ से निकले हैं एसीओ से, और अभी तक का कोई जांच पड़ताल इसकी नहीं हो रही। ये व्यवस्था आज हुई है कोई अधिकारी आने की वजह से, बाकी कोई व्यवस्था नहीं थी कल तक।
जिला अस्पताल के अलावा निजी अस्पतालों में भी बड़ी संख्या में बच्चों के भर्ती होने की खबर है। स्वास्थ्य विभाग का एपिडेमिक सेल गांव गांव जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रहा है।
सुबह शाम खाना है और खाना खाने के बाद खाइएगा माई,
तो साफ सुथरा रहने का सुझाव भी दे रहा है। लेकिन अस्पतालों में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। समीर आत्मज मिश्र, BBC बहराइच।
BBC इंडिया बोल।
क्या RSS अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा है? मोहन भागवत ने कहा है कि RSS भारत के संविधान और धर्म निरपेक्षता को मानता है और कांग्रेस मुक्त भारत का समर्थन नहीं करता। RSS को ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ी? यही है इस बार BBC इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 22 सितंबर को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 102 7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
दिन भर में अब बारी है BBC के श्रोताओं की, आपकी चिट्ठियों की।
आपकी राय। नमस्कार, राजेश प्रियदर्शी की ओर से आपकी ढेर सारी चिट्ठियों और ईमेल के साथ मेरे साथ स्टूडियो में हैं इंदु पांडे।
मेरा भी नमस्कार आपकी राय में।
जी चलिए सिलसिला शुरू करते हैं चिट्ठियों और ईमेल का। एक लंबा सा ईमेल दिख रहा है।
बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत लंबा सा ईमेल भेजा है आशुतोष कुमार पांडे ने आरा बिहार से, और इन्होंने कॉलम वाइज एक एक चीज़ पे अपनी बात कही है। तो पहले कहते हैं कि राजेश जोशी ने सीताराम येचुरी का जो इंटरव्यू लिया था वो इनको बहुत अच्छा लगा, और वात्सल्य राय ने किसी कांग्रेसी नेता का इंटरव्यू लिया था जिनका नाम ये भूल रहे हैं तो दोबारा सुनने के लिए यूट्यूब पर खोजा लेकिन इनको नहीं मिला। तो उसके बाद आगे बोलते हैं कि गुरप्रीत सैनी की एक रिपोर्ट पढ़ी जिसका शीर्षक था भारत में बच्चों की मृत्यु दर घटी, पर ये कैसे संभव हुआ। ये रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसमें सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट नहीं बल्कि इसके समानांतर और भी कई आंकड़े हैं। आगे उनका कहना है कि बीबीसी फेसबुक पर एक सर्कस संबंधी वीडियो देखा बुशरा शेख ने बनाया था तो उन्हें धन्यवाद कहना चाहते हैं। उसके बाद लिखते हैं कि मीना कोटवाल की रिपोर्ट भी पढ़ने को मिली जिसमें सीवर में सफाई के लिए उतरे एक बच्चे की जान चली गई। अपने मृत पिता के साथ एक बच्चा अपनी आंख को बाएं हाथ से ढक के दाहिने हाथ से अपने पिता के सर को पकड़ रहा था। और उसके बाद दो लाइन इन्होंने लिखी है, राजेश जोशी से निवेदन है कि पत्रकारिता की भाषा में रिपोर्ट और स्टोरी का मतलब क्या होता है कृपया बताएं।
आज राजेश जोशी यहाँ नहीं है लेकिन मोटे तौर पर स्टोरी एक ज्यादा व्यापक अर्थ वाली बात है जिसपे कि हम और विस्तार से चीज़ों को बताते हैं। रिपोर्ट जो है आमतौर पर जो बहुत तथ्यात्मक खबर होती है उसको हम रिपोर्ट कहते हैं, और जब हम स्टोरी कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसमें तथ्यों के अलावा भी और कुछ है।
और बाकी जो इन्होंने तारीफ की उसके लिए तो शायद धन्यवाद ही बनता है।
बिल्कुल बिल्कुल, आशुतोष जी हमारे नियमित श्रोता हैं और अक्सर विस्तृत पत्र हमें भेजते हैं और उसके लिए उनका शुक्रिया।
और ये है रफीक इब्राहिम परकार, ग्राम करजी, तालुका खेड़, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र से। सभी को अभिवादन के साथ कहते हैं कि आदर्श राठौर की ब्राजील की राजनीति के बारे में प्रस्तुति दुनिया जहान बहुत अच्छी लगी, और एशिया कप क्रिकेट के बारे में आपके अपडेट्स सराहनीय हैं।
बहुत शुक्रिया। और दुनिया जहान में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि खबरों के बहाने हम आपको दुनिया के और ख़ासतौर पे उन देशों के बारे में जानकारी दे सकें जिनके बारे में आमतौर पर भारतीय मीडिया में आपको विस्तार से जानकारी नहीं मिलती। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा इसके लिए आपका शुक्रिया, और आपकी सराहना हम आदर्श राठौर तक जरूर पहुंचा देंगे।
बस इनका एक सवाल है कि मानसी दास अपने कार्यक्रम के दौरान दास को दाश क्यों कहती हैं?
जी उनका नाम मानसी दास ही है और वो मूलतः उड़ीसा की रहने वाली हैं और वहाँ उस नाम का वैसे ही उच्चारण किया जाता है तो वो अपने हिसाब से अपने नाम का सही उच्चारण करती हैं।
और सऊदी अरब से जुबैल भी हैं जिन्हें दुनिया जहां कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, और साथ में रविंद्र कुमार रंजन है मठिया भया बासोपट्टी जिला मधुबनी बिहार से।
इन सबका बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम को पसंद करने के लिए, और आदर्श राठौर तक ये बात पहुंचा दी जाएगी।
और ये ईमेल है, पाकिस्तान से आई किसी भी खबर पर हम गौर फरमाते हैं और बीबीसी से आई दो खबरों
मुझे लगा कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ये ईमेल आई है।
नहीं, ये बहादुरगढ़ किशनगंज से गौतम दत्ता ने हमें ये मेल भेजा है
जी।
और लिखते हैं कि पहली जो चीज इनको अच्छी लगी सुमायला जाफरी की खबर है कि पाकिस्तानी हिंदुओं ने किस प्रकार गणेश पूजा मनाई, बहुत अच्छी लगी। और दूसरी खबर जिसमें नए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगान और बांग्लादेशी शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कही, उम्मीद है ऐसा ही कोई धमाकेदार बैटिंग भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने में वो करेंगे।
बहुत शुक्रिया। जब हमें ये खबर मिली कि पाकिस्तान में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है, और जब हमें ये पता चला कि ये पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में रहने वाली मराठी कम्युनिटी है, मराठी लोग हैं जो महाराष्ट्र की तरह ही धूमधाम से वहाँ गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाते हैं, तो हमें लगा कि ये खबर आप तक जरूर पहुँचानी चाहिए क्योंकि इसके बारे में भारत में शायद ही किसी को पहले पता रहा हो, तो ये खबर हम सबको बहुत दिलचस्प लगी।
और पूछते हैं कि सूर्यांशी पांडे द्वारा खेल समाचार में जोश और खरोश सुनने को नहीं मिलता, क्या बीबीसी ने उनके स्टाइल को लेकर के आपत्ति जताई है?
बिल्कुल नहीं, आपत्ति तो आप जता रहे हैं, उनको हम बता देंगे कि खेल समाचार के जोश खरोश की कमी हमारे श्रोता महसूस कर रहे हैं।
और सुरेश अग्रवाल केसिंगा ओडिशा से, ये भी पाकिस्तान में जो गणेश पूजा हुई थी उसके लिए उसकी रिपोर्ट सुनके बहुत खुश हुए।
बहुत शुक्रिया आपका। वो रिपोर्ट थी ही इतनी दिलचस्प कि जितने लोगों ने उसको सुना उसकी तारीफ की और उसमें उनको एक नयापन महसूस हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहली बार इसके बारे में सुना कि ऐसा कुछ पाकिस्तान में भी होता है। मेरे ख्याल से अब समय हो रहा है पता बताने का। तो हमें अगर आप डाक से चिट्ठी भेजना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता वही है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
श्रोताओं की चिट्ठियों के बाद बारी है खेल समाचारों की। इंदु पांडे स्टूडियो में आ चुकी हैं। इंदु जी, एशिया कप से ही शुरुआत करेंगी आज भी?
बिल्कुल, अफगानिस्तान के 7 विकेट गिर चुके हैं और 176 रन के बन चुके हैं।
मुकाबला किसके खिलाफ
है? अरे वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि राशिद और नई क्रीज पे बने हुए हैं। अब बात करते हैं एशिया कप का जो छठा मैच है, जो आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में अफगानिस्तान के कैप्टन टॉस जीत कर उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और अपना पहला मैच खेल रहे अबू हैदर ने अपने डेब्यू मैच की चौथी ही गेंद पर पहला विकेट भी ले लिया। और इस मैच के लिए अफगानिस्तान ने अपने अंतिम एकादश में एक बदलाव किया है। नजीबुल्लाह जादरान के स्थान पर टीम में शमीउल्लाह शेनवारी को शामिल किया गया है और वहीं बांग्लादेश ने अंतिम एकादश में 3 बदलाव किए हैं। तो इस दोनों टीमों के ऊपर क्रिकेट एक्सपर्ट विजय धैया क्या कहते हैं?
यहाँ पर अफगानिस्तान जरूर उनको एक उनसे ज्यादा मजबूत चुनौती देने की कोशिश करेगा। फिर आपने पिछले मैच में ना सिर्फ श्रीलंका को हराया, आप अगले राउंड में भी पहुंच गए हो, तो वो एक विश्वास भी होगा। लेकिन कई बार ये हो जाता है कि आप अगले राउंड में पहुंच गए तो थोड़ा सा आपको ये लगता है कि आप अगले राउंड में तो पहुंच ही गए हैं। अगर उस चीज को नहीं सोचेंगे और पहले वाले विश्वास को रखेंगे कि यार हमने एक ऐसी टीम को हराया जो टेस्ट स्टेटस वाली टीम है, वर्ल्ड कप विनर थी, उनको हराया है, उस कॉन्फिडेंस आप किसके साथ उतरेंगे तो बांग्लादेश को तकलीफ दे सकती है।
तो इससे पहले ये दोनों ही टीमें मौजूदा एशिया कप में अपना एक एक मैच खेल चुकी हैं और इन दोनों टीमों का मुकाबला श्रीलंका की टीम से हुआ था। दोनों ही मैचों में श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ा और इसी वजह से श्रीलंका को टूर्नामेंट से बाहर भी होना पड़ा। इसका मतलब साफ है कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम अपना पिछला मैच जीत कर यहां पहुंची है, लेकिन दोनों में से एक टीम को आज हार का सामना करना होगा।
एक को तो हार नहीं होगा। इंदु जी, ये बताइए कि शहबाज नदीम एक उभरते हुए क्रिकेटर हैं, उनका नाम भी आज खबरों में आ रहा था, क्या खबर है ये?
ये झारखंड के स्पिनर शहबाज नदीम ने आज विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान के खिलाफ खेलते हुए 10 रन पर 8 विकेट चटकाकर लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की 2 दशक पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया।
10 रन पर 8 विकेट।
जी, भारतीय राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने की दावेदारी पेश कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर नदीम की उम्दा गेंदबाजी के सामने राजस्थान की टीम 28.3 ओवर में 53 रन पर ढेर हो गई। नदीम ने 10 ओवर में 4 मेडन फेंकते हुए 10 रन देकर के 8 विकेट हासिल किए।
गजब खेल समाचार। इंदु जी, कुछ और बचे हैं या?
बिल्कुल, एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि अफगानिस्तान के लेग स्पिनर गेंदबाज राशिद खान का आज हैप्पी बर्थडे है, यानी कि जन्मदिन भी है, और राशिद आज अपना 20वां जन्मदिन मना रहे हैं। तो ऐसे में अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश को मात देकर राशिद को आज गिफ्ट देने की कोशिश जरूर करेगी।
और कितने बजे तक नतीजा आ जाएगा अंदाजन?
अभी तो थोड़ा सा वक्त लगेगा।
खेल समाचार सुना रही थी इंदु पांडे। और चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं गुरप्रीत से।
भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इसी महीने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से मुलाकात करेंगी। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये मुलाकात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक के इतर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। गिरफ्तार कार्यकर्ताओं पर भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में माओवादियों से संपर्क होने का आरोप था। यूरोपीय संघ के नेताओं ने दोहराया है कि प्रधानमंत्री टेरेजा मे की ब्रेग्जिट डील पर सहमति से पहले ब्रिटेन आयरलैंड की सीमा पर सुरक्षा और सीमा सुरक्षा नियंत्रण की गारंटी दे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। हमारा अगला प्रसारण नमस्कार भारत, समय जानते हैं आप भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com आपके साथ है। शुभ रात्रि।